नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विचारणीय पुस्तक पर बात करने वाले हैं।
जी,
पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की लिखी हुई 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग दो।
हाँ, ये पुस्तक 1988 से 90 के बीच लिखी गई थी। उनकी जो पूरी क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला है, ये उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
और ये साहित्य उनके लिए कितना खास था?
बहुत ज्यादा। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने तो इसे अपना ज्ञान शरीर ही कहा था। वसंत पंचमी 1990 को उन्होंने वंदनीय माताजी से खास तौर पर कहा था कि भाई, मेरे इस ज्ञान शरीर को, यानी कि इस क्रांतिधर्मी साहित्य को जन जन तक पहुंचाना ही है।
अच्छा।
हाँ, और सबसे कहने को कहा था कि इसे फैलाएं। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इस पुस्तक के नजरिए से समझे कि 21वीं सदी को पूज्य गुरुदेव कैसे देखते थे, एक महाक्रांति के रूप में, एक उज्जवल भविष्य के रूप में।
बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो स्थिति है उससे। पुस्तक मानती है कि दुनिया में दिक्कतें हैं जो हमारी ही नासमझी, हमारी दुर्बुद्धि से आई हैं, जैसे प्रदूषण, जनसंख्या का दबाव,
नैतिक पतन, झगड़े।
हाँ, पुस्तक में जिक्र भी है कि कैसे टाइम मैगजीन ने पृथ्वी को इंडेंजर्ड अर्थ कहा था उस समय।
हाँ,
लेकिन पूज्य गुरुदेव सिर्फ यही नहीं रोकते, वो इसे सिर्फ मुश्किल दौर नहीं बल्कि युग संधि काल कहते हैं।
युग संधि काल?
जी, मतलब दो युगों के मिलने का समय, और ये समय एक महाक्रांति लाता है। ये कोई ऊपर ऊपर का बदलाव नहीं है बल्कि बहुत गहरा, बहुत व्यापक परिवर्तन है, और इसका मकसद है सृजन, संतुलन।
पर गुरुदेव इसे सिर्फ बदलाव ना कहकर महाक्रांति क्यों कह रहे हैं? ये महा क्या दिखाता है?
महा इसलिए क्योंकि ये परिवर्तन उतना ही मौलिक और युगांतरकारी है जितना हम पौराणिक कथाओं में राम राज्य की स्थापना या महाभारत के युद्ध को मानते हैं।
अच्छा, हाँ, या फिर जैसे इतिहास में देखें तो भगवान बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन, ये पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरी चेतना के बदलने का संकेत है। पुस्तक तो 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी की शुरुआत के 12 सालों को खास तौर पर संधि बेला कहती है,
यानी ये तेज बदलाव का मुख्य समय है।
बिल्कुल, केंद्र बिंदु है ये।
पर इतने तेज बदलाव और संकटों को देखकर तो मतलब निराशा भी हो सकती है लोगों को।
हाँ, और यही पुस्तक का सबसे अहम संदेश आता है कि निराशा को तो छोड़ना ही होगा हर हाल में। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर जीत अंत में सद्बुद्धि की ही होगी।
ये आशा कहां से आती है?
पूज्य गुरुदेव ने कई भविष्य वक्ताओं और विचारकों का जिक्र किया है, नॉस्ट्रोडेमस, कीरो, जीन डिक्सन, महर्षि अरविंद, यहां तक कि अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर एडगर मिचेल का भी। इन सब ने संकटों के साथ साथ एक रोशन मुस्तकबिल, एक उज्जवल भविष्य का इशारा साफ साफ किया है।
तो मतलब संकटों की बात डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है।
बिल्कुल सही। ये चिंता बढ़ रही है, समस्याओं को लेकर जो जागरूकता आ रही है, यही तो आशा का सबसे बड़ा संकेत है। जब हम समस्या को ठीक से समझते हैं तभी तो हल की तरफ बढ़ते हैं ना।
हाँ, ये बात तो है।
और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बाकी काम तो महाकाल की योजना खुद ही पूरा करा लेगी, हमें बस अपना काम करना है।
अच्छा, ये महाकाल वाली बात और ये जो चौथी शक्ति का जिक्र है पुस्तक में, बुद्धि बल, शासन सत्ता, धन शक्ति,
जी,
इनके अलावा एक चौथी शक्ति, प्रखर प्रतिभा, जरा इसके बारे में बताइए।
हाँ, ये प्रखर प्रतिभा कोई साधारण प्रतिभा या इंटेलिजेंस नहीं है, ये उससे कहीं गहरी चीज है।
गहरी? कैसे?
ये अपने छोटे मोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करती है। इसकी प्रेरणा ऊंचे आदर्श होते हैं, लोक कल्याण की भावना होती है। ये श्रद्धा, प्रज्ञा यानी विवेक, और निष्ठा यानी समर्पण, इन गहरी संवेदनाओं पर टिकी होती है। यूं समझिए कि ये वो अंदर की दैवीय प्रेरणा है जो किसी वैज्ञानिक को मानवता के लिए कुछ खोजने या किसी समाज सेवक को बिना स्वार्थ के सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। अपनी सीमाओं से बहुत ऊपर उठकर यही शक्ति नया युग बनाएगी।
और क्या इस नए युग के लिए कोई प्रैक्टिकल गाइडलाइन, कोई रास्ता भी बताया गया है?
हाँ, बिल्कुल। पुस्तक 21वीं सदी के युग धर्म के चार आधार बताती है, बहुत जरूरी है ये।
अच्छा, क्या है वो?
पहला है समझदारी।
समझदारी
यानी दूरदर्शिता, हम जो भी करें उसके अभी के और दूर के परिणामों को समझने का विवेक।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा ईमानदारी, और ये सिर्फ पैसे कौड़ी की ईमानदारी नहीं है, विचारों में, भावनाओं में भी। मूल बात वही, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा अपने लिए चाहते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु।
समझ गया। और तीसरा?
तीसरा है जिम्मेदारी, अपनी सेहत, अपने परिवार से शुरू करके समाज, देश और पूरी सृष्टि के प्रति जो हमारे कर्तव्य है उन्हें पहचानना और निभाना, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और चौथा?
चौथा स्तंभ है बहादुरी।
बहादुरी मतलब शारीरिक बल?
नहीं नहीं, ये है नैतिक साहस, मॉरल करेज, अनीति, अन्याय, गलत चीजों के खिलाफ खड़े होने का साहस। और सिर्फ विरोध नहीं बल्कि अच्छी चीजों को, सत प्रवृत्तियों को बढ़ाने और फैलाने का पराक्रम भी इसी में आता है।
समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये तो सुनने में बहुत ऊंचे आदर्श लगते हैं। क्या ये सिर्फ हम इंसानों के बस की बात है?
यहीं पर पूज्य गुरुदेव एक बहुत अहम बात जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये बदलाव सिर्फ हमारे करने से नहीं होगा, ये महाकाल का संकल्पित विधान है।
महाकाल का विधान मतलब?
मतलब समय की जो विराट शक्ति है, या कह लीजिए ईश्वरीय इच्छा, उसका तय किया हुआ प्लान है। ये वो शक्ति है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाती है। जैसे पुस्तक में उदाहरण है पंचायत राज, सहकारिता, ये विचार कभी कल्पना लगते थे पर धीरे धीरे जमीन पर उतर रहे हैं ना, ये उसी बड़ी योजना का हिस्सा है।
और इसमें सूर्य यानी सविता देवता की भी कोई भूमिका है?
हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। सूर्य को सिर्फ ऊर्जा का भौतिक स्रोत नहीं माना गया, वो एक चेतना शक्ति भी है, प्रेरणा देने वाली, ओजस यानी जीवन शक्ति, और तेजस यानी आभा देने वाली। गायत्री मंत्र और ध्यान के जरिए इसी सविता की आध्यात्मिक शक्ति को हम अपने अंदर जगा सकते हैं।
अच्छा।
और इससे हम नए युग के निर्माण में ज्यादा असरदार ढंग से अपना योगदान दे सकते हैं।
तो अगर सारी बातों को समेटें तो निचोड़ क्या है?
निचोड़ यही है कि हम एक मुश्किल लेकिन पूरी तरह आशा से भरे हुए बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। ये समय है जब इंसान की अपनी ही पैदा क्यों ही मुश्किलों, उसकी दुर्बुद्धि पर सद्बुद्धि की जीत होगी
और इसका जरिया बनेगी प्रखर प्रतिभा।
बिल्कुल, प्रखर प्रतिभा का उदय होगा। और ये सब एक तय योजना के तहत हो रहा है जिसे महाकाल की इच्छा चला रही है, और ये हमें एक उज्जवल भविष्य की तरफ जरूर ले जाएगी।
तो ये सिर्फ भविष्य की कोई भविष्यवाणी नहीं है बल्कि आज कैसे जिए उसका भी एक रास्ता सुझाती है ये पुस्तक।
एकदम सही कहा आपने। और यहीं पर शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल भी छोड़ सकते हैं हम।
हाँ जरूर।
कि वो खुद अपने जीवन में इस प्रखर प्रतिभा को कैसे जगा सकते हैं? युग धर्म के जो चार स्तंभ बताए गए, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, उन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें, इस नए सृजन में अपना सक्रिय योगदान कैसे दें?
बिल्कुल। और इसी ज्ञान को, इसी संदेश को फैलाने के लिए, जैसा कि पूज्य गुरुदेव चाहते थे और जैसा प्रकाशक का भी अनुरोध है कि इस पुस्तक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि ये ज्ञान शरीर सचमुच में जन जन का मार्गदर्शन कर सके।
जी,